ये आकाशवाणी दिल्ली है।
सपना साकार हुआ।
पेड़ की छाया में बाल काटने से लेकर दुकान के मालिक बहुत खुश हो, कैसे हुआ ये सब?
भाई, पीएम विश्वकर्मा योजना ने दी टूल किट, कौशल बढ़ाया ट्रेनिंग से और दिया बिना किसी गारंटी के बैंक से लोन। सच में सपने साकार हुए।
इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एमएसएमई मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाखों विश्वकर्माओं जैसे मालाकार, कपड़े धोने वाले, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, कॉयर बुनकर, नाव निर्माता का कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, टूल किट और बिना गारंटी की जरूरत के बैंक द्वारा लोन दिया जा रहा है। लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। पीएम विश्वकर्मा, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभालने के बाद अपने मंत्रिमंडल और सरकार के सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ कामकाज को लेकर बैठक की। एम्स नई दिल्ली ने नया रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली नगर निगम महापौर डॉ शैली ओब्रॉय ने शहर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था की कमी को लेकर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और आकाशवाणी दिल्ली परिसर के रंग भवन में आज राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य पर आधारित माटी के रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभालने के बाद आज अपने मंत्रिमंडल और सरकार के सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ कामकाज को लेकर बैठक की। इस बैठक में मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल रहे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार के हर विभाग की जिम्मेदारी है कि वे दिल्ली के नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री और अफसर ये सुनिश्चित करें कि दिल्ली के हरेक जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचे और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार सभी अधिकारियों को पूरा सहयोग देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च लेखा संस्थानों के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षण का अधिकार क्षेत्र पारंपरिक लेखा परीक्षण से आगे बढ़ गया है। इसमें लोक कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना शामिल है, जिससे सभी नागरिकों की समान सेवा सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं तेजी से प्रदान की जा रही हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने कैग कार्यालय को व्यापक अधिकार और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। राष्ट्रपति ने कहा कि कैग का कार्यालय संविधान निर्माताओं की उम्मीदों पर खरा उतरा है।
I believe that the office of the CAG has lived up to the expectations of the constitution makers. It follows a strict code of ethical and moral conduct that ensures the highest order of probity in its functioning. What is equally important for effective auditing of public finance is timeliness. If a wrong is pointed out well within time, it can be corrected.
4 दिन के सम्मेलन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इस सभा में 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के 41वें सम्मेलन का शुभारंभ किया। 3 दिन का ये सम्मेलन उभरती भू राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में सामरिक परिचालनगत और प्रशासनिक मामलों पर उपयोगी चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
कमांडरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल को भारत का अग्रणी रक्षक बताया। ये बल विशेष आर्थिक क्षेत्र की लगातार निगरानी के जरिए देश के विशाल समुद्री तट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि ये बल हथियार, मादक पदार्थ और मानव तस्करी तथा आतंकवाद जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को भी रोकता है। श्री सिंह ने आंतरिक आपदाओं से राष्ट्र की रक्षा करने में तटरक्षक बल के योगदान को अतुलनीय बताया। श्री सिंह ने स्वदेशी मंचों और उपकरणों के साथ भारतीय तटरक्षक बल तथा सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की सरकार की वचनबद्धता दोहराई। आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रयासों पर श्री सिंह ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बलों के लिए 31 जहाजों का निर्माण भारतीय शिपयार्ड कर रहा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने आज एक प्रौद्योगिकी कंपनी इंटुएटिव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये समझौता रोबोटिक सर्जरी के लिए नया प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए किया गया है। एम्स का दाविंची रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र शल्य चिकित्सकों और देखभाल टीमों को यूरोलॉजी, स्त्री रोग, सामान्य सर्जरी और अन्य विशेषज्ञताओं में रोबोट सर्जरी करने में सहायक होगा। एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास ने कहा कि संस्थान में अनुभवी रोबोटिक शल्य चिकित्सक हैं, जो देश भर में नए शल्य चिकित्सकों को परामर्श और प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र पूरे भारत में सर्जिकल कौशल को आगे बढ़ाने और रोगी देखभाल मानकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ वी के बंसल ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से नई दिल्ली के एम्स को रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षण के लिए सभी अवसर मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स दिल्ली के चिकित्सक और बाहरी लोग रोबोटिक की सहायता से होने वाली सर्जरी सीख सकेंगे।
This is a very important day in the sense that this initiative of Intuitive will provide us the facility for training of robotic surgery. And with this Intuitive signing MOU today, AIMS has got all the platforms for training in robotic surgery. We already have a Medtronics training platform and the Indian system, the Mantra system is also there. So the surgeons of the institute coming from the institute as well as from outside will have the facility to train on all the robotic platforms which are available at present in the world, including the best from Intuitive, which is the Da Vinci system, including the developing Hugo system and the Mantra system, which is the Indian system.
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आकाशवाणी दिल्ली परिसर के रंग भवन में आज राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य पर आधारित माटी के रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थानी कलाकार दयाराम भांड और उनकी मंडली ने राजस्थान के विभिन्न लोकगीतों और नृत्यों पर अपनी प्रस्तुति दी। कलाकार दयाराम राजस्थान के मशहूर लोकगीत पधारो हमारे देश की प्रस्तुति दी। इसके बाद उनकी मंडली ने गोरबंध, भवई, चरी और कालबेलिया जैसे प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यों पर अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, आकाशवाणी महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ सहित आकाशवाणी की विभिन्न इकाइयों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने आज करोल बाग जोन के देशबंधु गुप्ता रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान फैज रोड लालबत्ती से रानी झांसी गोल चक्कर तक के हिस्से को अतिक्रमण मुक्त किया गया। निगम उपायुक्त कर्नल अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत शहर के कई हिस्सों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने और सभी नागरिकों की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम की महापौर डॉ शैली ओबेरॉय ने शहर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था न होने को लेकर आज निगम आयुक्त को तलब किया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। डॉक्टर ओबेरॉय ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, जिससे नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर भर में दौरा करने के दौरान उन्हें सफाई व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। महापौर ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा कूड़ा न उठाए जाने के संबंध में निगम आयुक्त को अपना जवाब गुरुवार तक देने को कहा है। इसके अलावा आयुक्त को शहर में कूड़े का नियमित रूप से निपटान किए जाने के भी महापौर ने निर्देश दिए हैं, ताकि मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। शुक्रवार को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव से पहले सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। छात्रों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए सभी छात्र दलों द्वारा खूब मेहनत की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस चुनाव में विभिन्न पदों पर कुल 21 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें अध्यक्ष पद पर 8, उपाध्यक्ष पद पर 5, सचिव पद पर 4 और संयुक्त सचिव पद पर 4 उम्मीदवार हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए दो पालियों में सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना 28 सितंबर को होगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को राजधानी के मीराबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनके पास से उच्च गुणवत्ता का 116 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 60 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि शहर में बिजली बिलों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर शहर की जनता से अवैध शुल्क वसूल रही है। उनका कहना है कि दिल्ली में लोगों को मिल रहे बिजली बिलों में बिजली खपत चार्ज कम है और विभिन्न सरचार्ज अधिक हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अक्टूबर में दिल्ली में जर्मनी के साथ 2 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला खेलेगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने कहा कि जर्मनी के खिलाफ ये श्रृंखला विश्व स्तरीय हॉकी का एक शानदार और यादगार प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि ये आयोजन न केवल हॉकी की भावना को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत करेगा। पिछली बार भारत का सामना जर्मनी से पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में हुआ था, जहां यूरोपीय टीम 3-2 से विजयी हुई थी। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभालने के बाद अपने मंत्रिमंडल और सरकार के सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ कामकाज को लेकर बैठक की। एम्स नई दिल्ली ने नया रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली नगर निगम महापौर डॉ शैली ओबेरॉय ने शहर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था की कमी को लेकर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और आकाशवाणी दिल्ली परिसर के रंग भवन में आज राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य पर आधारित माटी के रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।